नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज लोकभवन में राज्यपाल के सचिव को औपचारिक इस्तीफा सौंप दिया है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि वे नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि उनकी सरकार को विधानसभा में 136 से अधिक विधायकों के समर्थन से पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए, ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
गृह मंत्री अमित शाह ने देश से हर अवैध अप्रवासी की पहचान करके उसे निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। आज वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान को याद किया। श्री शाह 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान मुद्रीकरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रस्तावित खंडों की अस्थायी सूची को अंतिम रूप दे दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि चिन्हित राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की कुल लंबाई 1,659 किलोमीटर से अधिक है। ये हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र सहित 9 राज्यों में फैले हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 को संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर में वहां के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की। बैठक के दौरान रक्षा सहयोग और दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर व्यापक चर्चा हुई। भारत कोरिया व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता के उन्नयन वार्ता का 12वां दौर नई दिल्ली में संपन्न हुआ। वार्ता की सह अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव कपिल चौधरी और कोरिया गणराज्य के व्यापार, उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय के व्यापार समझौता नीति महानिदेशक पार ग्युन ओह ने की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने उन्नयन वार्ता में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की गई। ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।